यानी सजनों, एक दफा की बात है, मगध देश का राजा चंद्रगुप्त दिल में विचार करता है कि भाई नाशवान संसार है, इसमें यह शरीर भी नाशवान है। एक दिन इंसान दुनिया से चला जाता है, धीरे धीरे उसकी भूल बन जाती है। तो राजा विचार करता है कि तेरे हाथ से कोई तू ऐसी यादगार बना के जा जो दुनिया तेरे को पीछे से याद करती रहे। राजा एक किला बनाना शुरू करता है, लेकिन जितनी चिनाई रात दिन को होती वो रात को ढह जाया करती। राजा परेशान होकर के एक दफा अपने गुरु को बुलाता है, कहने लगा, गुरुजी मैं कोई इमारत बनाना चाहता हूँ, कोई यादगार बना के जाना चाहता हूँ, लेकिन जितनी चिनाई दिन को होती है वो रात को ढह जाती, इसका कारण क्या है? तो राजा अपने गुरु से कहने लगा,
अरे मेरे साथ हो रही गुरुजी अचरज की माया, सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया। अरे सुनियो धर के ध्यान गुरुजी इस कारण बुलवाया।
कष्ट मिटानो सतगुरु हो जा मन का।
राजा हाथ जोड़ करके अपने गुरु से इस बात का जब कारण पूछता है, गुरुजी कहने लगे, राजा जब तक तू तेरे परिवार के मनुष्य की बलि नहीं देगा, जब तक तेरी ये इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। गुरु के जवाब को सुन करके राजा दुखी हो गया, चक्कर में पड़ गया। विचार करता है, परिवार में ऐसा कौन मनुष्य फालतू है जिसकी बलि देकर मैं इस इमारत को खड़ी करूं। लेकिन राजा अपनी रानी को बुलाता है। राजा रानी दोनों सलाह करके, राजा चंद्रगुप्त का लड़का मदनपाल था, उसको बुला कर कहने लगे, बेटे हम तेरी शादी दूसरी कर देंगे, तू तेरी रानी चंद्रप्रभा की बलि दे दे, ये इमारत खड़ी हो जाए, तेरे बाप का सपना सच्चा हो जाए। मदनपाल कहने लगा, पिताजी वो मेरी अर्धंगनी है, मैं उसका जीवन साथी हूं, और भगवान ने जिसको जीने का अधिकार दिया है, मैं मारने वाला कौन होता हूं। तो मदनपाल अपने बाप राजा चंद्रगुप्त से कहने लगा,
अरे भेट में पिताजी कोई भेज दिए और, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर, भेट में पिताजी कोई भेज दिए और, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर। ओ सब करना चाहिए सुधा, मत कोई काम करे बेहुदा, मत काम करे बेहुदा, देख देख जो कूदा करे चांदन चकोर, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज से करे मोरणी, मन की मन सावरे मोरणी, मन की मन सावरे मोरणी, अब चौतरफा ने फिरे मोरणी, नाच करे जग मोर, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर, चंद्र प्रभा रानी कालज की गोर,
भेट में पिताजी कोई भेज दिए और, चंद्र प्रभा रानी मेरे कालज की गोर,
ओ I'm not afraid.
समझाया मानी नहीं तो राजा ने कई बार, जब राजा कहने लगा तो करके क्रोध अपार। अरे हो गया कपूत, तू रखू न गवार न रे रखू न गवार, हो गया कपूत तू रखू न गवार ने, तेरी मर कर दूसरी हो जा मेलवार ने, जल्दी करके निकल साथ ले जा तेरी नार ने, नारी का गुलाम नीच जावे न परिवार ने। बदलाव आज तू मेरा मैं तेरा नहीं, शास्त्र का लेख देख कायदे का देरा नहीं, पुत्र वो सुपात्र जिन पिता वचन फेरा नहीं, बिना जो विचार सार दूर हो अंधेरा नहीं। करो किसी की इंतजारी करो, लगाइए डाट बाट किसी की इंतजारी करो, जाओ खाली हाथ साथ मन को ना भारी करो, छोड़ो सब ठाट बाट मन को ना भारी करो। राजा चंद्रगुप्त अपने बेटे मदनपाल को देश निकाले का हुक्म दे देता है कि बाप और बेटे के बीच में जो रिश्ता होता है तेरा मेरा आज से खत्म है, और यहाँ पर तेरा लेना कोई लेना देना नहीं है। मदनपाल अपनी जन्मभूमि को नमस्कार करता है, माता पिता को प्रणाम करके रानी चंद्रप्रभा को वहां से लेकर के निकल जाता है। मात पिता को नमन किया और हुआ महल से बाहर, लेकर के संग चल दिया तो चंद्र प्रभा प्रिय नार। मदनपाल अपनी रानी चंद्र प्रभा को लेकर के वहां से निकल जाता है। चलते चलते उनको एक भयानक जंगल आता है। जंगल को देख करके रानी चंद्र प्रभा कहने लगी, प्राणनाथ अब होगा क्या। चलते चलते पहुंच गए तो बियाबान दरम्यान, चंद्र प्रभा कहने लगी तो सुनो पति भगवान। सजनों, चलते चलते उनको श्याम का भक्त हो गया। रास्ते में एक बड़ का पेड़ आया, दोनों स्त्री पुरुष रैन बसेरा करने के लिए उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। अंधेरा हो गया, रात हो गई, उसी पेड़ के नीचे उनको नींद आ जाती है। लेकिन चंद्र प्रभा रानी हिम्मत हार जाती है। रैन बसेरा के लिए तो बड़ नीचे गए सोए, कामन तो पग चंपी करे कहे बचन इकरोए। जब रानी चंद्र प्रभा हिम्मत हार जाती है, मदन पाल कहने लगे, रानी हिम्मत रखो, हिम्मत की कीमत होती है। अंधेरा हो गया, नींद दोनों को आ जाती है। अब सोती हुई रानी को रात को एक सर्प आकर के डस जाता है। रानी चंद्र प्रभा वहीं पर खत्म हो जाती है। सुबह का भक्त हुआ मदन पाल उठा, देखता है, क्या देखता है, रानी चंद्र प्रभा मरी हुई पड़ी है। अब रानी को मरी हुई को देख करके मदन पाल को भी यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ कि भगवान तूने ये क्या किया। तो मदन पाल उस भयानक जंगल में रानी चंद्र प्रभा की लाश के पास में बैठा बैठा रो रहा था। हे भगवान ये क्या कीना, दुख में दुख दूना दे दीना। हे भगवान ये क्या कीना, दुख में दुख दूना मदनपाल अपनी रानी चंद्रप्रभा की लाश के पास में बैठा उस भयानक जंगल में अकेला रो रहा था। उधर से शंकर और पार्वती का जब दौरा गुजरना हो जाता है, मदनपाल का रोना सुनकर के शंकर भगवान मदनपाल के नज़दीक आते हैं। जब उस सीन को देखते हैं कि मरी हुई औरत के पास में भयानक जंगल में एक पुरुष बैठा रो रहा है, इस सीन को देख करके शंकर भगवान कहने लगे, बेटे क्यों रोता है, ये जिएगी नहीं, क्यों, इसकी उम्र इतनी थी। मदनपाल कहने लगा, भगवान आप त्रिलोकी के नाथ हैं, तीन लोक को पूरने वाले हैं, आप चाहो तो इसको जिंदी कर सकते हैं। शंकर भगवान कहने लगे, बेटे ये जिंदी तो हो सकती है, लेकिन तेरी उम्र में से इसको उम्र देनी पड़ेगी। मदनपाल कहने लगा, मैं तैयार हूं। शंकर भगवान कहने लगे, ठीक है, लेकिन इस बात का भेद इस तेरी रानी को मत बता देना, और जब भी तू तेरी उम्र वापस आएगा तेरे को मिल जाएगी। एक जल का लोटा लेकर के सूर्य की साक्षी से मदनपाल अपनी आधी उम्र रानी चंद्रप्रभा को देनी कहता है। रानी चंद्रप्रभा जिंदी हो जाती है, शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं। अब मदनपाल और रानी चंद्रप्रभा वहां से चल देते हैं। चलते चलते रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, प्राणनाथ भूख प्यास से काया साथ नहीं दे रही है, कोई ना कोई उपाय करो। मदनपाल एक कुटिया बनाता है, कहने लगा, रानी चाहता हूं पास में गांव है, उसमें कोई ना कोई खाने पीने का इंतजाम जरूर करके लाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊं जब तक तू इस कुटिया को छोड़ करके इधर उधर मत चली जाना। मदनपाल चला जाता है। मदनपाल को गए बहुत देर होगी, रानी चंद्रप्रभा अकेली बैठी बैठी परेशान हो गई। पास में एक साधु तप करता था, उस साधु के आश्रम पर रानी चंद्रप्रभा चली जाती है। महात्मा जी को जाकर के धोक प्रणाम करती है। उस भयानक जंगल में सुंदर स्त्री को देख करके महात्मा चक्कर में पड़ गया कि तू ये क्या देख रहा है। तो महात्मा उस रानी से पूछने लग गया,
काकी रहने वाली तेरा ग्राम तो बता, चंद्रमा सा चेहरा तेरा नाम तो बता। काकी रहने वाली तेरा ग्राम तो बता, चंद्रमा सा चेहरा तेरा नाम तो बता।
काकी रहने वाली तेरा ग्राम तो बता, चंद्रमा सा चेहरा तेरा नाम तो बता।
नाम तो बता रे तेरा, नाम तो बता,
नाम तो बता रे तेरा, नाम तो बता।
ओ चंद्रमा सा चेहरा तेरा नाम तो बता।
काकी रहने वाली तेरा ग्राम तो बता, चंद्रमा सा चेहरा तेरा नाम तो बता।
तमाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता।
जो है तेरी कहानी तमाम तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता।
तो बता, चंद्रमा सा तेरा तेरा नाम तो बता।
तेरा ग्राम तो बचा, चंद्रमा का तेरा तेरा।
जैसे तंदा तन के गगन में काले कटिरे रूप हुसन में रे
रूप हुसन में रूप हुसन में
रे अकेली बन में कोई काम तो बता चंदन मसा तेरा तेरा नाम तो बता रे अकेली बन में कोई काम तो बता चंदन मसा तेरा तेरा नाम तो बता सुंदर स्त्री को भयानक जंगल में अकेली को देख करके महात्मा चक्कर में पड़ गया। विचार करता है आज ही मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, महात्मा जी संसार में नारी जाति के अंदर में एक ऐसी दुखिया नारी आपके सामने खड़ी हूं जो शायद मेरे समान कोई नारी दुखी नहीं होगी। तो रानी महात्मा जी को अपना भेद बताने लगी और कहने लगी, महात्मा जी आप चाहो तो मेरा संकट दूर कर सकते हैं, अगर आपके आशीर्वाद से मेरे एक संतान हो जाए तो मैं जीऊं जब तक आपका गुण नहीं भूलूंगी। कहने लगी, मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर, मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर, मेरी
ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर, ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर,
दुख आफत की मारी सुर मैं दुख आफत की मारी आफत की मारी सुर मेरी,
ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर मेरी, ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर,
ईश्वर का सरना ले रखा रे इस दम पर दुखड़ा के रखा, बितारी सुर मेरी के पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर
मेरी, के पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर मेरी, के पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर,
दुख आफत की मारी सुर मैं दुख आफत की मारी आफत की मारी सुर मेरी,
ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी
सुर, संग में है भरतार मेरा उसे एक रती न ख्याल मेरा,
उसे एक रती न ख्याल मेरा,
अब साथी है भगवान मेरा रे मैं बहुत घनी दुख धारी दुख आफत की मारी सुर मेरी,
ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर मेरी, ये पूछेगा बाबा जी मैं दुख आफत की मारी सुर,
दुख आफत की मारी सुर मैं दुख आफत की
मैं दुख आफत की मारी सुर,
ये पूछेगा
सजनो, रानी के तमाम भेद को जानने के बाद में महात्मा रानी पर खोटी नीति विचार लेता है और कहने लगा, रानी तेरे सारे संकट दूर कर दूं, लेकिन तेरे पहले तेरे पति मदनपाल को जान से खत्म करना होगा। सजनों, रानी भी महात्मा के मोहजाल में फंस चुकी थी। रानी कहने लगी, महात्मा जी खत्म तो कर दूंगी, लेकिन खत्म करूं कैसे, कोई तरीका आपको बताना पड़ेगा। महात्मा कहने लगा, अब तू तेरी कुटिया पर चली जा, थोड़ी देर बाद में तेरा पति मदनपाल खाने पीने की सामग्री लेकर के आएगा और वो पानी लाने भी जाएगा। जब पानी लाने जाए तो तू उसके साथ चली जाना, वो कुएं से जब पानी खींचने लगे तो तू उसके कुएं में धक्का मार दे। ऐसी बातें करके रानी चंद्रप्रभा अपनी कुटिया पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद में मदनपाल खाने पीने की सामग्री लेकर के आ जाता है। मदनपाल कहने लगा, रानी तुम भोजन बनाने की तैयारी करो, मैं पानी लेकर आता हूं। लेकिन चंद्रप्रभा कहने लगी, प्राणनाथ मैं साथ चलूंगी,
साथ गई मानी नहीं, समझाई कई बार, खींचण लाग्या डोलन जब दीनर धक्का मार, खींचण लाग्या डोलन जब दीना धक्का मार।
मदनपाल जब पानी लेने जाता है, चंद्रप्रभा रानी भी साथ चली जाती है। जब मदनपाल कुएं से पानी खींचने लगा तो रानी चंद्रप्रभा अपने पति मदनपाल के कुएं में धक्का मार देती है और साधु के साथ चली जाती है।
भाई चंद्रप्रभा चंपत भई, अब साधु जन के साथ, यहाँ का किस्सा यहाँ रहा, अब सुनो जी आगे की बात, यहाँ का किस्सा यहाँ रहा, अब सुनो जी आगे की बात।
चंद्रप्रभा अपने पति मदनपाल के कुएं में धक्का मार करके साधु के साथ में चली जाती है। अब सजनों, थोड़ी देर बाद में एक बणजारा अपनी बालद लेकर आता है। उसी कुएं के पास में बणजारा बालद के डेरे ढाल देता है। कुआं देख करके बणजारी कहने लगी, जी पास में कुआं है बच्चों, को प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लेकर आओ। बणजारा रस्सी डोल लेकर कुएं पर चला जाता है। जब पानी यानी डोल कुएं में उरासता पानी खींचने लगा, अंदर मदनपाल डोल को पकड़ लेता है। बणजारा डर का मारा कांपने लगा कि हो न हो कोई भूत प्रेत जिंद छलावा हो सकता है। लेकिन अंदर से मदनपाल कहने लगे, भाई डरने की बात नहीं है, मैं तो एक दुखी इंसान हूं। कहने लगा,
भूत नहीं पैताल नहीं, ना कोई जिंद छलावा है, मैं तो एक दुखिया बंदा, सुनना दर्द सत का दावा है, मैं एक दुखिया बंदा, सुना दर्द सत का दावा है। कहने लगया, कभी कमर था राजा का मैं, मोड़ा बैरागी को नासूं, दशा बिगड़ गई आज मेरी, मैं बहुत बड़ा निर्भागी हूँ, दशा बिगड़ गई आज मेरी, रे मैं बहुत बड़ा निर्भागी हूँ।
यानी सजनों, बणजारा मदनपाल को कुएं से बाहर निकाल लेता है। अपने तमाम बीते हाल मदनपाल उस बणजारे को बताता है। मदनपाल की बात सुनकर के बणजारे के आंखों आंसू आ गए। मदनपाल और बणजारा दोनों पगड़ी पलट धर्म के भाई बन जाते हैं। सजनों, पास में एक नगरी थी, उस नगरी में एक जसकरण नाम का एक सेठ था। सेठ बड़ा दयालु और धर्मात्मा था। मदनपाल जसकरण सेठ के मुनीम की नौकरी करने लग जाता है। उधर बाबा जी ने कुछ कमाया नहीं, जितना भी चंद्रप्रभा का जेवर जखीरा था सारा बेच खाया। अब बाबा जी और चंद्रप्रभा के पेट भरने के लाले पड़ गए। बाबा जी रानी को सलाह देता है, रानी पेट का भरण पोषण कैसे किया जाए। सजनों पास में एक नटनियों का डेरा था, नटनी नाचना गाना किया करती थी, ये उनका पैतृक धंधा था। बाबा जी रानी को सलाह देता है कि रानी अब तो एक ही रास्ता सामने है, इन नटनियों के पास में रह करके तेरे को नाचना और गाना सीखना पड़ेगा। सजनों मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। बाबा जी रानी चंद्र प्रभा को लेकर के नटनियों के डेरे में जाता है। चंद्र प्रभा कहने लगी नटनियों से कि भाई आज से मैं भी तुम्हारे परिवार की एक सदस्य हूं।
आओ आओ ये सखी नाच सिखाओ ये सखी मेरे मन भाया, तोता भी जाके बीच नृत्य बतलाया, पापी मन को समझाऊं,
पापी मन को समझाऊं,
प्रभु की माया तोदा विदा के बीच नृत्य बतलाया, गाड़ दिखाई दे,
कदम कदम पर काटे चुभ गए दिखाई दे,
प्रणाम चूक गई मौका,
प्रणाम चूक गई मौका,
या मन बालम संग धोखा,
या मन बालम संग धोखा,
सम
बतलाया करो, गण में नी पूर्ण होय मन चाया।
रानी चंद्रप्रभा उन नटनियों के पास में रह करके नाच गान के अंदर अति प्रवीण हो जाती है। दूर दूर तक इलाके में उसकी बड़ाइयां होने लगी। अब कुछ दिनों बाद में उसी नगरी का राजा है, एक ब्रहसेना नाम का एक राजा था। राजा के राजमहलों में एक कंवर ने जन्म लिया था। उस कंवर की खुशहाली में राजा जी खोल करके दान किया था, बधाइयां बांटी थी। जनता का मनोरंजन के लिए नाचने और गाने वालियों का भी प्रोग्राम रखा था। दूर दूर की कलाकार राजा की महफिल में प्रोग्राम देने के लिए आ रही थी। उधर ब्रहसेन राजा का मित्र जसकरण सेठ भी अपने मुनीम मदनपाल सहित उस महफिल में आया हुआ था। दूर दूर की कलाकार उस महफिल में प्रोग्राम देने के लिए आ रही। नंबर रानी चंद्रप्रभा का भी आता है। चंद्रप्रभा भी अपना प्रोग्राम देने के लिए जाती है। जब चंद्रप्रभा रानी अपना प्रोग्राम पेश करती है, चंद्रप्रभा के प्रोग्राम को देख करके सारी जनता बड़ी खुश होती है। जनता की खुशी को देख करके राजा भी बड़ा खुश होता है। और राजा एक गाना और सुनने के लिए रानी चंद्रप्रभा को कहता है। कहने लगे कि भाई तेरे प्रोग्राम से मेरी सारी जनता बड़ी खुशी है, इसलिए सबका एक एक प्रोग्राम है, लेकिन तेरा प्रोग्राम दो होंगे। कहने लगा तो रानी चंद्रप्रभा दूसरा प्रोग्राम अपना पेश करती है।
अरे रिम झिम मेवा बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का, रिम झिम मेवा बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का,
रिम झिम मेवा बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का।
मस्त महीना सावन का रे, मस्त महीना सावन का,
मस्त महीना सावन का रे, मस्त महीना सावन का।
रिम झिम मेवा बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का, रिम झिम मेवा बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का। कहीं चमेली फूल रही, बागू के मांगा लहिंडोलर सकी सहेली झूल रही,
बागू के मांगा लहिंडोला सकी सहेली झूल रही।
दरबार कुटुंब ने भूल रही, दरबार कुटुंब ने भूल रही, मस्ती का चढ़ा हिलोर महीना सावन बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का।
जाते शोभा अपनी दिखलाते कोयल नीर पपैया बोले कोयल नीर पपैया बोले रे मोर मचावे सोर महीना सावन का रिम झिम रिम झिम मेवा बरसर गठा चढ़ी घन घोर महीना सावन का सजनों चंद्र प्रभा के प्रोग्राम से सारी जनता सारी पब्लिक बड़ी खुशी होती है। पब्लिक की खुशहाली को देखकर के राजा भृसेन भी राजा भृसेन की खुशियों का भी ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे भाई जितने भी मेरी महफिल में कलाकार प्रोग्राम देने के लिए आई हैं इनाम सबको मिलेगी लेकिन तेरे को मुंह मांगी इनाम मिलेगी क्यों तेरे प्रोग्राम से मेरी सारी जनता बड़ी खुशी है इसलिए तेरी मर्जी जो मांग सकती है। उधर सजनों मदनपाल राजा भृसेन का मित्र जसकरण सेठ के साथ में मदनपाल उस महफिल में आया हुआ था। मदनपाल रानी चंद्रप्रभा को जान जाता है और अपने नाम की अंगूठी निकाल करके रानी चंद्रप्रभा को इनाम भेजता है। अंगूठी के ऊपर नाम को दे करके रानी चंद्रप्रभा मदनपाल को पहचान जाती है। कहने लगी राजा मेरी इनाम मांग लूंगी लेकिन पहले वचन देने होंगे। तो राजा भृसेन रानी चंद्रप्रभा को वचन देता है कि तेरी मर्जी जो मांग सकती है। कहने लगी कि राजा तेरी महफिल में मेरा एक दुश्मन है मैं उसको मौत की सजा चाहती हूँ। राजा भृसेन कहने लगे वो कौन है। रानी चंद्रप्रभा मदनपाल की तरफ इशारा करती है तुरंत ही मदनपाल को वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा भृसेन फांसी का हुक्म दे देता है। जल्लाद जब फांसी देने के लिए मदनपाल को लेकर के जाते हैं तो मदनपाल बहुत चिल्लाता है बहुत शोर शराबा करता है भाई मैं बेगुनाह हूँ मेरा कोई ऐसा कसूर मैंने ऐसा कसूर ऐसा दोष जन्म लेकर नहीं किया जो आज मेरे फांसी होनी चाहिए। तो जब जल्लाद मदनपाल को लेकर के फांसी देने के लिए चल देते हैं तो मदनपाल कहने लगे भाई दगा किसी का सगा नहीं होता है लेकिन ऐसा दगा संसार में और किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा आज मेरे साथ हो रहा है। कहने लगा मेरे साथ में धोखा हो गया या करगी हेरा फेरी ओ बेशक फांसी दे दे राजा जी दिला दे मेरी बेशक फांसी दे दे राजा जी दिला दे मेरी मेरे साथ में धोखा हो गया या करगी हेरा फेरी बेशक फांसी दे दे राजा जी दिला दे मेरी बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी
मेरे साथ में धोखा होगा करगी हेरा फेरी ओ बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी ओ बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी
एक तरफा की डिग्री देकर झगड़ा साफ करते हो बेगुनाह को सजा मिले या ये इंसाफ करते हो
बेगुनाह को सजा मिले या ये इंसाफ करते हो
ऐसा मोटा पाप करते हो बन बैठे अंधेरी बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी ओ बेशक फांसी दे मेरी
मेरे साथ ने धोखा हो गया करगी हेरा फेरी हो बेशक फांसी दे दे राजा
सभी का दीवा तस गया। अमी सुधा का बादल बन कर अमृत धार बरस गया।
अमी सुधा का बादल बन के अमृत धार बरस गया।
लोहे के फंदे में फंस गया रे बियाबान का गहरी, बेशक फांसी दे दे राजा सीता दे मेरी, बेशक फांसी दे दे राजा सीता दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया कर गी हेरा फेरी, बेशक फांसी दे दे राजा सीता दे मेरी।
बेशक फांसी दे दे राजा सीता दे
सजनों। जल्लाद जब मदन पाल को फांसी के फंदे पास में ले जाते हैं, मदन पाल बहुत चिल्लाता है, बहुत शोर शराबा करता है कि भाई दगा किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन ऐसा दगा संसार में और किसी के साथ में नहीं होना चाहिए जैसा आज मेरे साथ हो रहा है। यानी मदन पाल के रुख को देख करके राजा भृसेन एक मिनट के लिए फांसी रोक देता है। कहने लगे भाई कुछ देर बाद में तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, इसलिए तेरे अंतःकरण की तेरे आत्मा की कोई बात कहना चाहता है तू कह सकता है। तो राजा मदन पाल कहने लगा राजा मेरा एक छोटा सा काम कर दे, ये मेरी आखिरी इच्छा है। कहने लगा
एक लोटा मंजवा कर जल का जल्दी से तुम मंगवाओ, सूरज काणी हाथ जुड़ा कर इस औरत से ढलवाओ।
सूरज काणी हाथ जुड़ा कर इस औरत से ढलवाओ,
इसकी वस्तु इस पे जाओ इतनी कहने बथेरी, बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी। ओ बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी। मेरे साथ में धोखा हो गया कर की हेरा फेरी, बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी। ओ बेश के फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी।
मेरे साथ ने धोखा हो गए कर की हेरा फेरी, हाँ बेश के फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी। हाँ बेश के फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी।
मदन पाल कहने लगा राजा एक जल का लोटा मंजवा कर मंगवाओ और इस औरत के हाथ में दे करके सूर्य की तरफ ढलवा करके इसके मुंह से ये कहलवा दे कि जो इसकी वस्तु मेरे पास है वो वापस इसी के पास चली जाए। तुरंत राजा ऐसा ही करता है, एक पानी का लोटा मंगवा करके रानी चंद्रप्रभा के हाथ में दे करके सूर्य की तरफ ढलवा करके रानी के मुँह से कहलवाया कि जो इसकी वस्तु मेरे पास में है वो इसी के पास में चली जाए। इतना कहते ही रानी चंद्रप्रभा वहीं पर खत्म हो जाती है। सजनों जितना भी पिछला किस्सा था वो सारा मदनपाल राजा भृसेन को कह सुनाता है। मदनपाल की बात सुनकर के राजा भृसेन की भी आंखों में आंसू आ गए। सजनों धर्म की जीत होती है, पाप का नाश होता है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता राजा भृसेन मदनपाल के साथ में जोड़ लेता है। अपनी खुद की लड़की की शादी राजा मदनपाल के साथ में बड़े धूमधाम से राजा भृसेन करता है। फांसी मदनपाल को हो रही थी वो उस महात्मा को फांसी होती है। सजनों हमेशा धर्म की जीत होती है और पाप का नाश होता है, इसलिए बताया
भैर छाट छाट कर करी कविता सबके मन को भाती है, नाथु सिंह तेरी लहदारी ने काफी दुनिया गाती है।
नाथु सिंह तेरी लहदारी ने काफी दुनिया गाती है,
जिसका राम हिमाती है वो धम सांद सवेरी, बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी। ओ बेशक फांसी दे दे राजा दिला दे मेरी।
सजनों आपके सामने एक भजन सुना देता हूँ।
हे बिन जी कैया कीनो ये हे बिन जारण नार, बिन जी कैया कीनो ये हे बिन जारण नार,
बिन जे कैया कीनो ये हे बिन जारण नार, बिन जे कैया कीनो ये हे बिन जारण नार।
ओ
खजाना हीरा भरा अपार, रंग महल में गुप्त खजाना हीरा भरा अपार, पत्थर समझ कर कदर न जानी खोदी नी बेकार, बिन जी कैया कीनो ये हे बिन जारण नार,
पल पूंजी घटती जावे किनो नहीं विचार बावड़ी, पल पल पूंजी घटती जावे आया लुटेरा लूट लीनी तेर घनी लगाई मार, बिन जी कैया किनो ये हे बिन जारण नार,
बिन जे कैया किनो ये हे बिन जारण नार,
खोदी मूल गवार, बिनज करने आई जगत में खोदी मूल गवार, धर्म राज जब लेखो मांगे धनी लगावे मार, बिनज कैया किनो ये हे बिन जारण नार,
नवल नाथ कटे भव बंदन हो जा बेड़ा पार।